नमस्कार भारत, तारीख 28 सितंबर, दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के खिलाफ आज दवा विक्रेताओं की हड़ताल, क्या है सरकार से मांग?
इसको सरकार FDI की नज़र से या सिर्फ डिस्काउंट की नज़र से नहीं देखे, ये हमारा सरकार से सवाल या निशान है कि आप इस पे अच्छे तरह से समझ ले।
सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश मिलेगा या नहीं, आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
So we think Article 25 should be protected and every temple, every church, every mosque in India should have that protection of Article 25.
जनसंघ संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय पर किताब को लेकर असम की भाजपा सरकार पर विपक्ष का हमला।
भाजपा के कितने नेताओं को जानकारी है दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, और उनकी किताब 1,60,00,000 रुपया, ये सरकारी खजाना का लूट की बात।
खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार, दिलनवाज पाशा से। भारत सरकार के दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री को नियमित करने के खिलाफ देश भर के दवा दुकानदार आज एक दिन की हड़ताल पर हैं। दवा दुकानदारों का कहना है कि दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री से उनके व्यापार पर असर पड़ेगा और नशे की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलेगा। ऑनलाइन दवा विक्रेता दवा के दामों पर भारी छूट दे रहे हैं, जिससे दवा दुकानदारों के व्यापार पर असर पड़ सकता है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से नामित ब्रेट कावना और उन पर बलात्कार के प्रयास के आरोप लगाने वाली महिला ने सीनेट के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाए हैं। ये नाटकीय सुनवाई अमेरिका की सबसे ताकतवर अदालत में कौन रहेगा, इसका फैसला कर सकती है। कावना ने अपनी नियुक्ति की पुष्टिकरण प्रक्रिया को राष्ट्रीय शर्म बताते हुए किशोरावस्था में क्रिस्टीन ब्लासी फोर्ड का यौन शोषण करने के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने अन्य महिलाओं के आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि वामपंथी विचारधारा के लोग उनकी नियुक्ति को रोकना चाहते हैं और इस प्रक्रिया में उनका और उनके परिवार का नाम खराब कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कावना के बयान को ठोस और ईमानदार बताते हुए उनकी नियुक्ति की पुष्टि के लिए सीनेट में मतदान की मांग की है। इससे पहले समिति के समक्ष बयान देते हुए डॉक्टर फोर्ड ने रुआंसी आवाज में कहा कि बलात्कार की कोशिश के दौरान जब कावना ने उनका मुंह दबाया था, तब उन्होंने अपनी जान जाने का डर महसूस किया था। उन्होंने कहा कि वो इस बात को लेकर 100% निश्चिंत हैं कि उनका बलात्कार करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति कावना ही थे। घटना के समय वो 15 साल की थीं। उनका कहना है कि उन्हें याद है कि हमले के समय कावना और उनका एक दोस्त शराब के नशे में थे और हंस रहे थे। उन्होंने बताया कि कावना ने उनके कपड़े उतार दिए थे और बिस्तर पर गिरा दिया था। उन्होंने कहा कि इस हमले का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव हुआ। समिति के समक्ष बयान देते हुए उन्होंने कहा,
For a very long time, I was too afraid and ashamed.
बहुत लंबे समय तक मैं बहुत डर और शर्म में रही और मैंने किसी को विस्तार से नहीं बताया। मैं अपने अभिभावकों को ये नहीं बताना चाहती थी कि मैं 15 साल की उम्र में ऐसे घर में थी जहां कोई बड़ा नहीं था और मैं लड़कों के साथ बियर पी रही थी। मैंने लंबे समय तक अपने आप को समझाया कि ब्रैट ने मेरा रेप नहीं किया और इसलिए मुझे पूरी घटना को भूल कर आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ साल बाद मैंने बहुत चुनिंदा दोस्तों को इस दर्दनाक अनुभव के बारे में बताया। मैंने शादी से पहले अपने पति को बताया था कि मैंने यौन हमले का सामना किया है। ये थे डॉक्टर फोर्ड के शब्द। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बताया है कि ईरान एक गुप्त स्थान पर परमाणु उपकरण और सामग्री का भंडार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए नेतन्याहू ने ईरान की राजधानी तेहरान में इस जगह का पता बताते हुए इसके अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ताओं से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ईरान ने सही समय आने पर इस सामग्री का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। वहीं ईरान का कहना है कि वह परमाणु हथियार बनाना नहीं चाहता है और उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। नेतन्याहू ने कहा, आज मैं पहली बार ये बात सार्वजनिक कर रहा हूं कि ईरान की राजधानी तेहरान में गुप्त स्थान है और इस स्थान पर परमाणु भंडारण केंद्र है जहां ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए भारी मात्रा में सामग्री और उपकरण इकट्ठा कर रखे हैं। चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उत्तर कोरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों में राहत देने पर विचार करने के लिए कहा है। वहीं अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चेतावनी दी है कि ये प्रतिबंध जारी रहने चाहिए। BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मैं मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं और मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। आज पूरे भारत के केमिस्ट हड़ताल पर हैं। देश के विभिन्न राज्यों के केमिस्ट और दवा संगठनों ने दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में ये बंद बुलाया है। केमिस्ट्स का कहना है कि केंद्र सरकार ऑनलाइन दवाइयां बेचने वाली ई फार्मेसीज को नियमित करने की कोशिश कर रही है, जिसके आने वाले समय में कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। क्या है केमिस्टों की मांगे और उन पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सुनिए बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर की ये रिपोर्ट।
ऑनलाइन दवाइयां बेचने वाली ई फार्मेसीज के विरोध में देश भर के केमिस्ट एक बार फिर एकजुट हो गए हैं। इस बार उन्होंने दवाइयों की सभी दुकानों को बंद रखने का फैसला किया है। आज ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई है। महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महासचिव अनिल नावंदर ने बताया कि क्यों दवा विक्रेताओं ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है।
ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन थ्रू इंटरनेट है, इसके लिए गवर्नमेंट ने जो गैजेट नोटिफिकेशन ड्राफ्ट पब्लिश किया है, हम उसकी खिलाफत करते हैं। और इसका रीजन भी यह है कि इट इज नॉट इन द सोशल इंटरेस्ट आल्सो एंड इट इज कॉजिंग द डैमेज टू पब्लिक हेल्थ आल्सो।
दरअसल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स हैं जिन पर जाकर कोई भी आदमी अपना अकाउंट बनाकर डॉक्टर की लिखी पर्ची अपलोड कर सकता है और उसमें लिखी दवाइयां ऑर्डर कर सकता है। इस मामले पर करीबी नजर रख रहे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा ने बताया कि पारंपरिक दवा दुकानदारों और रिटेलर्स के बीच की ये जंग दरअसल कारोबार को लेकर है।
इसको आप इस तरीके से समझिए कि दो दुकान खुलती है, एक दुकान कहता है कि मैं आपको 100 रुपए का सामान दूंगा, दूसरा दुकान कहता है कि मैं आपको 50 रुपए का सामान दूंगा या 60 रुपए का सामान दूंगा। एक ग्राहक होने के नाते मैं उस दुकान पे जाऊंगा जहां मुझे 60 रुपए का सामान बिक रहा है। यही परेशानी है। ये जो घमासान मचा हुआ है दोनों के बीच में, एक तरफ ई टेलर्स हैं और एक तरफ आपके जो पारंपरिक जो दवा दुकानदार हैं जिनको हम ब्रिक्स एंड मोर्टार सेलर्स कहते हैं, वो हैं। और यहाँ पर लड़ाई यही है कि वो कितना सस्ता बेच रहे हैं और जो सस्ता बेच रहे हैं वो सही चीज बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं।
दवा विक्रेताओं का कहना है कि ऑनलाइन दवाओं की बिक्री से न सिर्फ बहुत से लोगों के रोजगार को खतरा पैदा हो गया है, बल्कि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि कम दाम पर मुहैया करवाई जा रही दवाइयों की गुणवत्ता ठीक है या नहीं। महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महासचिव अनिल नावंदर ने कहा कि ये मुद्दा सामाजिक हितों से भी जुड़ा हुआ है।
इसको सरकार FDI की नज़र से या सिर्फ डिस्काउंट की नज़र से नहीं देखे, ये हमारा सरकार से सवाल या निशान है कि आप इस पे अच्छे तरह से समझ ले, इसमें सोशल इंटरेस्ट को समझ ले और उसके बाद डिसीजन ले।
सरकार ई फार्मेसियों को रेगुलराइज करने जा रही है और इसके लिए उसने सुझाव मंगवाए हैं। ऐसे में वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा मानते हैं कि कुछ हद तक दवा विक्रेताओं द्वारा उठाई जा रही बातों में दम है, क्योंकि ई फार्मेसीज की वैधता को लेकर स्पष्टता का अभाव है।
दवा के दुकान के मामले में जो रजिस्ट्रेशन हैं उनके कई सारी शर्तें होते हैं, कई सारे नियम होते हैं, कई सारे जो चीजें हैं कई उसे पूरी करनी होती है, वो यहाँ पर अभी जो है वो स्पष्ट नहीं है। इसी वजह से ये ड्राफ्ट रेगुलेशन लाया गया है। तो जो कन्वेंशनल या जिनको हम लोग ट्रेडिशनल रिटेलर्स कहते हैं, उनके आरोप में कुछ इस बात का दम दिखता है कि क्या ये वैध है या नहीं है, क्योंकि अभी सरकार ने ड्राफ्ट लागू किया है तो जाहिर सी बात है कि अभी उनकी वैधता पर सवाल है।
बहरहाल दवा विक्रेताओं के संगठनों का कहना है कि पहले वो हड़ताल पर जाने से पहले प्रशासन को सूचना देते थे कि किस इलाके में कौन सी दुकान खुली है, लेकिन केमिस्टों के संगठन के नेता अनिल नावंदर ने कहा कि इस बार वो सहयोग के मूड में नहीं है।
ना लिस्ट दे रहे, ना दुकानें खोल रहे, ना कुछ कर रहे एरिया वाइज, लेकिन सीवियर इमरजेंसी अगर कोई आती है तो हमने सारे FDI ऑफिशियल्स को हमारे पदाधिकारियों के नंबर दे रखे हैं, हमारे आसपास के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको दे रखे।
दवा विक्रेताओं का कहना है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो संगठन दुकान खोलने के घंटे कम करने और चुनावों का बहिष्कार करने जैसे सख्त फैसले भी ले सकता है। दवा विक्रेता अपने कड़े रुख पर अड़े हुए हैं, लेकिन इस मामले पर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आदर्श राठौर, BBC दिल्ली।
श्रोताओं, बीते दो दिनों से देश सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेशों का गवाह बन रहा है और आज का दिन भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट आज ये फैसला सुना सकता है कि केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ इस पर अपना फैसला देगी। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
पिछले साल अक्टूबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला मंदिर से जुड़े 5 सवालों के कानूनी जवाब ढूंढने के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई थी। उनमें से सबसे अहम सवाल ये था कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं देने से क्या भेदभाव होता है और क्या इससे उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। पिछले महीने संवैधानिक पीठ ने आज फैसला सुनाने का दिन तय किया है, तो क्या उम्मीद रख रहे हैं याचिकाकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता राहुल ईश्वर? हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट करोड़ों लोगों के सांस्कृतिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए संविधान की धारा 25 को सुरक्षित रखेगी। हर समाज में भगवान होता है और देवता होता है, दोनों अलग हैं और भारत के कानून के तहत देवता एक कानूनी इकाई है। ये थे राहुल ईश्वर के शब्द। हर साल करीब 3 से 4 करोड़ लोग सबरीमला में अयप्पा स्वामी के दर्शन करने केरला के पत्तनमतिट्टा जिले में आते हैं। अयप्पा स्वामी को अनंत ब्रह्मचारी कहा जाता है और इसी कारण मंदिर में 10 साल से 50 साल की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। अयप्पा स्वामी के भक्तों का मानना है कि महिलाओं से कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सिर्फ एक खास उम्र की महिलाओं को मंदिर में नहीं आने दिया जाता है क्योंकि इस उम्र के दौरान उनको माहवारी होती है। केरला के हिंदू ऐक्यवेदी संगठन के अध्यक्ष प्रभाकरन कहते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ये कहा जाता है कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश दिया जाना चाहिए तो भी केरला के महिलाएं मंदिर में नहीं जाएंगी। ये थे प्रभाकरन के शब्द। दरअसल इन सारे संस्थाओं के नेता जो महिलाओं को मंदिर के अंदर जाने का विरोध कर रहे हैं वो परेशान लग रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 150 साल पुराने कानूनों को रद्द करती आ रही है। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को मौलिक अधिकार कह दिया था और कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता और अडल्ट्री से जुड़ी धाराओं के खिलाफ अपना फैसला सुनाया, तो आज का फैसला उतना ही महत्वपूर्ण समझा जा रहा है।
सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। रिपोर्ट सुना रहे थे इमरान कुरैशी। भारत प्रशासित कश्मीर में कल 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 3 चरमपंथी और 1 सैनिक मारे गए थे, जबकि श्रीनगर में एक युवा की गोली लगने से मौत हो गई थी। कश्मीर के अलगाववादियों ने श्रीनगर में आज मारे गए युवा की मौत के खिलाफ कश्मीर में बंद बुलाया है और आम लोगों के मारे जाने के खिलाफ प्रदर्शन करने की अपील की है। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
आज़ादी के समर्थन में नारे श्रीनगर के नूरबाग इलाके में एक युवा मोहम्मद सलीम की गोली लगने से हुई मौत के बाद स्थानीय लोग दे रहे थे। गुरुवार रात को मोहम्मद सलीम को उस समय गोली लगी जब इलाके में सुरक्षा बलों ने कई रहायशी मकानों को घेरे में लिया था। पुलिस ने अपने एक बयान में बताया है कि सुरक्षा बलों ने नूरबाग इलाके में कई रहायशी मकानों को घेरे में लिया था, जिस दौरान इलाके में छुपे चरमपंथियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिस दौरान एक व्यक्ति मोहम्मद सलीम की गोली लगने से मौत हो गई है। पुलिस का कहना था कि इस इलाके में चरमपंथियों के छुपे होने की सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी। हालांकि मारे गए युवा के परिजनों का कहना था कि उनका बेटा रात के दौरान घर से बाहर निकला था, जिस दौरान उनको गोली मार दी गई। सलीम के पिता मोहम्मद याकूब मलिक ने मीडिया को बताया, मोहम्मद याकूब बता रहे थे कि उनका बेटा घर से बाहर भेड़ बकरियों को देखने गया था, जिस दौरान उन्हें गोली मार दी गई थी। वो ये भी बता रहे थे कि उन्होंने सुबह 5 बजे बेटे का मृत्यु शव घर के पास देखा। इस घटना के बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन हुए और स्थानीय युवाओं और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों की भी खबरें हैं। श्रीनगर में युवा की मौत के खिलाफ कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने प्रदर्शन किए। श्रीनगर में युवा की मौत पर कई राजनीतिक दलों ने निंदा करते हुए घटना में जांच की मांग की है। श्रीनगर के डाउनटाउन में प्रदर्शनों को रोकने के लिए प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया है। उधर दक्षिणी कश्मीर के जिला अनंतनाग के डूरू इलाके में गुरुवार को एक मुठभेड़ के दौरान चरमपंथी संगठन लश्कर ए तैयबा के एक कमांडर को सुरक्षा बलों ने मारने का दावा किया है। इस मुठभेड़ में एक सैनिक भी मारा गया है। मारे गए चरमपंथी के जनाजे में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। गुरुवार को एक दूसरी मुठभेड़ जिला बड़गाम के पांजन चाड़ोरा में हुई, जिसमें पुलिस ने 2 चरमपंथियों को मारने का दावा किया है। پولیس کا کہنا تھا کہ مارے گئے چرمپنتھی حزب المجاہدین سے جڑے ہوئے تھے۔ کشمیر کے الگ آبادیوں نے نورباغ، سری نگر میں یوا کی موت اور حریت کانفرنس کے کارکرتاؤں کی گرفتاریوں کے خلاف آج کشمیر بند بلایا ہے۔ اننت ناگ اور بڈگام میں گروار صبح سے ہی موبائل انٹرنیٹ سیواؤں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ماجد جہانگیر، بی بی سی، سری نگر۔
سپریم کورٹ نے کل رام جنم بھومی بابری مسجد سے جڑے ایک اہم معاملے میں 1994 کے اپنے فیصلے پر پنروچار کرنے سے انکار کر دیا۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنا اسلام کا ابھن انگ نہیں ہے۔ ہمارے سہیوگی سمیر آتمج مشر نے اس پورے معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ کے وکیل اور بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے سنیوجک ظفر یاب جیلانی سے بات کی اور سب سے پہلے یہی سوال پوچھا کہ اس فیصلے کو کس روپ میں دیکھا جائے۔
1993 میں جب بابری مسجد کی زمین کو ایکوائر کیا تھا سینٹرل گورنمنٹ نے اور ان مقدموں کو ختم کر دیا تھا اور ہم لوگوں نے اس کو چیلنج کیا تھا، تو اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا 1994 میں، اسماعیل فاروقی کیس کہلاتا ہے، کہ مسجد کی زمین ایسنشل چونکہ نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، نماز مسجد کے باہر ہی پڑھی جا سکتی، اس لیے اس کو ایکوائر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر اسی کے ججمنٹ میں کورٹ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ ایکویشن فائنل نہیں ہے، بلکہ یہ لینڈ گورنمنٹ آف انڈیا کی کسٹڈی میں رہے گی اور جو فریق اس مقدمے کو جیتے گا اس کو دی جائے گی۔ تو وہ ختم ہو گیا، اس کا افیکٹ ہم لوگوں نے اس کو یہاں مقدمہ لڑا، ججمنٹ ہو گیا، اس کی اپیل کی، لیکن چونکہ ججز نے ہائی کورٹ کے کئی اس کو ریفر کیا تھا ججمنٹ کو، تو ہم لوگوں نے سپریم کورٹ میں جب بحث شروع ہوئی تھی دسمبر میں تو بتایا اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ اس کو غلط طریقے سے پڑھا جا رہا ہے۔ اب ججز نے دو ججمنٹ آئے ہیں، ججز دو جو میجارٹی ججمنٹ ہے اس میں ایسا بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آبزرویشنس ہیں 94 ججمنٹ کے وہ ایک خاص کنٹیکسٹ میں ہیں، اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اگر جنرلائز نہیں ہے تو ہماری بات ہوگی۔ اور دوسری بات کورٹ نے یہ کہہ دی ہے شاید کہ یہ اس مقدمے کی جو سوٹ سے اپیلیں پینڈنگ ہیں ان کی سنوائی کے لیے اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے، یہ بھی ہمارا کہنا تھا۔
یہ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس کو لارجر بینچ میں بھیجا جائے کہ نہ بھیجا جائے،
یہ اسی لیے کہا جا رہا تھا کہ 5 ججز کا ججمنٹ ہے، 3 ججز اس سے باؤنڈ ہیں، تو مگر ججز کے اختیار ہوتا ہے ایک کسی ججمنٹ یا ایکٹ کو ریڈ ڈاؤن کرنے کا، تو انہوں نے اس کو غالباً اپلائی کرتے ہوئے اس ججمنٹ کو ریڈ ڈاؤن کر دیا، خود ایکسپلین کر دیا۔ اب سپریم کورٹ کا ججمنٹ سپریم کورٹ ایکسپلین کرے تو اس سے جو اب ایکسپلین کر رہا ہے وہی پڑھا جائے گا۔
تو لیکن ایک جج صاحب اس میں ہیں جنہوں نے کہ جو اس فیصلے سے اتفاق نہیں رکھ رہے ہیں، تو ان کا کیا ہے، ان کی کیا آبجیکشن
ہے؟ کہ یہ بیٹر ہوتا کہ اس کو لارجر بینچ کو ریفر کر دیا جائے۔ اب ان کا ججمنٹ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کیا ریزننگ دی ہے، لیکن ہم تو میجارٹی ججمنٹ جو معلوم ہوا ہے اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، تو وہ جو کسی نے کہا تھا وہ سیٹ بیک کرنے کا، بالکل سیٹ بیک نہیں، ہماری تو بات مان لی گئی، وہ کلیئرفائی ہو گئی، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے۔
سیٹ بیک یعنی جو مسلم پکشکار ہیں ان کو کوئی سیٹ بیک،
کوئی سیٹ بیک نہیں،
یا پھر کسی کو
بھی نقصان نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو یہ ججمنٹ ایسا ہے کہ پیورلی لیگل کوشچن کو ایکسپلین کیا گیا۔
نماز مسجد کے اندر پڑھی جائے، مسجد کے باہر پڑھی جائے، یہ پوری طرح سے ایک دھارمک فیکٹ ہے، یہ کیسے چلا گیا کورٹ میں، کیسے چلا گیا سپریم کورٹ میں چلا گیا؟
کنسرن نہیں ہے پڑھی جائے، ایک انہوں نے زمین ایکوائر کی، اس پہ ایک حصے پر مسجد، ہماری طرف سے آرگومنٹ یہ ہوا کہ آپ ہمارے آرٹیکل 25 کے تحت ہمارا رائٹ ہے مسجد کو ایکوائر نہیں کر سکتے۔ کورٹ کی ریزننگ یہ تھی کہ اگر اسپیشل سرکمسٹانسز ہوں تو مسجد بھی ایکوائر ہو سکتی ہے، مندر بھی ایکوائر ہو سکتا ہے، اس کے جسٹیفیکیشن میں انہوں نے یہ آبزرویشن کیے تھے، یہ انہوں نے کہا کہ مسجد میں آپ نہ جائیے نماز نہ پڑھیے، ایسا نہیں تھا، تو ایکویشن کے کنٹیکسٹ میں تھا۔ اب اس کیس میں انہوں نے دو ججز نے ایکسپلین کر دیا ہے۔
ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیزیں آ رہی ہیں یا لوگ جن میں کنفیوژن ہے وہ اسی بات کو لے کر کے ہے کہ شاید یہ مقدمہ، یہ کیس اس معاملے کو لے کر کے تھا کہ وہ نماز کہاں پڑھی جائے، مسجد کے اندر ہی پڑھی جائے یا مسجد کے باہر بھی پڑھی جائے۔ تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوشچن نہیں تھا، لیکن
جو ہے یہ میڈیا نے خود پیدا کیا ہے، تو اب اس کو میں کیا کروں؟
میں
کہہ تو رہا ہوں آپ سے، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ کوشچن ہی نہیں تھا نماز کہاں پڑھی جائے، کوشچن یہ تھا کہ جو ایکوزیشن ہوا ہے وہ اس گراؤنڈ پہ کویش ہو سکتا ہے کہ اس سے آرٹیکل 25 کا وائلیشن ہوا یا نہیں ہو سکتا۔ کورٹ نے کہا کہ اس سے آرٹیکل 25 کا وائلیشن نہیں ہوا ہے۔
الہ آباد ہائی کورٹ کے وکیل ظفر یاب جیلانی۔ اب جان لیتے ہیں کہ آج کے اخباروں میں کیا کچھ خاص ہے۔ اخباروں کے ساتھ اسٹوڈیو میں پہنچ چکے ہیں دل نواز پاشا۔ جی بتائیں دل نواز،
جس خبر کی ہم چرچا کر رہے تھے سپریم کورٹ کا فیصلہ، وہ سبھی اخباروں میں پہلے پنے پر ہے، اور سپریم کورٹ نے ایک اور اہم فیصلہ دیا شادی کے باہر سمبندھوں کو لے کر، یہ لگ بھگ سبھی اخباروں کے پہلے پنے پر ہے۔
وواہیتر سمبندھ،
جی بالکل۔ دینک جاگرن لکھتا ہے پتی پتنی اور वो अब अपराध नहीं लेकिन इसके आधार पर ले सकते हैं तलाक, और यही शीर्षक लगाया है नवभारत टाइम्स ने। इसके अलावा अमर उजाला कहता है पति की जागीर नहीं है, पत्नी वह जो मर्जी करे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिए एक बयान में कहा है। इसके अलावा मस्जिद में नमाज का केस बड़ी बेंच को नहीं, ये शीर्षक है अमर उजाला का, जिस खबर का हम जिक्र कर रहे थे उसी पर, और अलग अलग अखबारों ने अलग अलग तरीके से इसे लिखा है। नवभारत टाइम्स लिखता है अयोध्या केस से जुड़ा नहीं मस्जिद में नमाज पढ़ना,
और इसी पे ही जनसत्ता की हेडिंग है 94 का फैसला पुनर्विचार के लिए नहीं जाएगा संविधान पीठ के पास।
जी बिल्कुल, और जस्टिस एस नज़ीर जिन्होंने इसमें जो है विभाजित मत दिया, अलग मत दिया, उनके बयान को प्रमुखता से छापा है इंडियन एक्सप्रेस ने। उन्होंने कई सवाल उठाए हैं जिसमें एक अहम सवाल उन्होंने उठाया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता जो मिली हुई है नागरिकों को, और उसमें किसी धर्म के लिए अभिन्न या ज़रूरी क्या चीज़ है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। ये उन्होंने अपने जो डिसेंटिंग जजमेंट उन्होंने दिया है इसमें उन्होंने एक अहम मुद्दा उठाया। इसके अलावा एक खबर
उनका मत था कि ये जो मामला है उसको लार्जर बेंच,
जी बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। और इसी पर कई अखबारों का ये कहना है कि अयोध्या मामले की जो सुनवाई होनी है उसकी राह में जो रोड़ा था वो अब साफ हो गया है। अलग अलग लोगों के मत अखबारों ने लिखे हैं। कुछ मुस्लिम पक्षकारों का ये कहना है कि
जैसे अभी हमने जफर याब जिलानी को सुना, वो कह रहे हैं कि नहीं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कह रहे हैं उनका मत है।
जी बिल्कुल, अखबार बता रहे हैं कि एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि ये मामला अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा, अयोध्या का विवाद, वो विवाद जिस पर पूरे देश की नजर है और देश के हर वर्ग की नजर है, वो एक टाइटल सूट यानी मालिकाना हक को लेकर होगा। आपको याद होगा 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में अयोध्या में जो विवादित स्थल है उसकी जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था, जिसका एक हिस्सा जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसको दिया गया था। इसके अलावा एक और खबर इंडियन एक्सप्रेस में है, मेरठ का एक वीडियो जो चर्चा में आया था जिसमें एक लड़की को पुलिस कार में पीटा जा रहा था, कांस्टेबल पीट रहे थे, और काफ़ी विवादित बातें पुलिस सिपाही कह रहे थे, उससे जुड़ी खबर है। अखबार लिखता है कि जो लड़की उस वीडियो में दिख रही है उसको उसके कॉलेज का और परिवार का समर्थन मिला है, और जो उसका मुस्लिम प्रेमी था वो अभी तक भूमिगत है, वो सामने नहीं आया।
कथित प्रेमी कहेंगे क्योंकि इसमें अभी साफ नहीं है।
जी जी बिल्कुल, और लोकपाल की तलाश के लिए जो है पैनल का गठन कर दिया गया है, ये खबर भी अलग अलग अखबारों में पहले पन्ने पर है।
जी दिलनवाज, अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। असम की सत्ता संभाल रही भाजपा सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर छपी किताबें 1,60,00,000 रुपए में खरीदकर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। सरकार ने विभिन्न पुस्तकालयों, शैक्षणिक एवं अन्य संस्थानों के लिए पुस्तकें खरीदी हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि भाजपा दीनदयाल के बहाने सरकारी पैसों को बर्बाद कर रही है। गुवाहाटी से दिलीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
असम में जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कोई काम शुरू करती है वो आलोचनाओं और विवादों में घिर जाती है। दरअसल असम सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर 15 खंडों में छपी 60,000 किताबें खरीदी हैं। 1,60,00,000 की इन किताबों को असम सरकार के पुस्तक निदेशालय ने संस्कृति विभाग की सलाह पर खरीदा है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि दीनदयाल उपाध्याय के बारे में असम के लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है और भाजपा दीनदयाल की विचारधारा को यहां प्रसारित करने के लिए सरकारी पैसा बर्बाद कर रही है। इससे पहले भी दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर राज्य के 12 नए कॉलेजों का नामांकन को लेकर सर्वानंद सोनोवाल सरकार के एक फैसले का जोरदार विरोध किया गया था। असम प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अपूर्व भट्टाचार्य ने बीबीसी से कहा,
भाजपा की कितने नेताओं को जानकारी है दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, और दीनदयाल जी आज आजादी के 70 साल के बाद हमको बताना जरूरी हो गया कि दीनदयाल उपाध्याय का क्या योगदान था देश आजाद करने में, और उनकी किताब 1,60,00,000 रुपया, तो ये सरकारी खजाना का लूट की बात है।
असम विधानसभा के जारी सत्र में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया के लिखित सवाल के जवाब में संस्कृति मामलों के मंत्री केशव महंत ने बुधवार को विभिन्न पुस्तकालयों, शैक्षणिक एवं अन्य संस्थानों के लिए इन पुस्तकों के खरीदने की जानकारी दी थी। दीनदयाल के नाम पर किताबें खरीदने को लेकर हो रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय गुप्ता कहते हैं,
अगर हम देखें तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए भारतीय जनसंघ के वो पुरोधा व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्र को एक करने के लिए, जनसंघ में कहा किसका स्वार्थ था, स्वार्थ था देश का, देश की जनता का। तो इस राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्रीय अखंडता को या राष्ट्रवाद को पुनर्जीवित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने सचमुच में काम किया उनके ऊपर अगर कोई किताब निकलती है, लोग पढ़ते हैं, तो ये कहना कि पैसे की बर्बादी है ये दिवालियापन है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भले ही पंडित दीनदयाल के नाम पर देश में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, लेकिन राज्य के वरिष्ठ पत्रकार बैकुंठनाथ गोस्वामी असम सरकार के इस कदम को प्रदेश की प्राथमिकता के अनुरूप किया गया काम नहीं मानते।
दीनदयाल जी के बारे में असम को आदमी को भी पता होना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी में दीनदयाल उपाध्याय है ना, स्कूल का टेक्स्ट बुक है, असम के टेक्स्ट बुक ठीक टाइम पर देने के लिए असम गवर्नमेंट को फंड नहीं है, उनका जो आइडियोलॉजी है वो भी असम में ऐसा एप्लीकेबल होने वाला आइडियोलॉजी नहीं जिसको फॉलो करके असम को जो ये जो विकास हो सके या असम को कुछ भलाई हो सके ऐसा भी नहीं है।
असम में भाजपा के नेतृत्व में बनी सरकार को पूरे 2 साल हो गए हैं। पार्टी ने लोगों से विकास के वादे कर सत्ता हासिल की थी, लिहाजा सरकार को अपनी प्राथमिकताएं जरूर याद होंगी। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
और अब खेल समाचार ज्योतिका सिंह से।
भारतीय टीम आज एशिया कप की 7वीं ट्रॉफी जीतने के लिए मैदान पर उतरेगी, तो उसके सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी। दोनों टीमें लगातार दूसरी बार इस खिताब के लिए भिड़ेंगी। भारतीय टीम 10वीं बार और बांग्लादेश की टीम 3री बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची हैं। क्या कहते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट विजय दहिया की आज के मैच में किसका पलड़ा भारी है?
फाइनल का मुकाबला है, जिस तरीके से बांग्लादेश खेल खाल के यहाँ तक पहुंची है उस लिहाज से आप ये उम्मीद जरूर करेंगे कि एक अच्छा मैच देखने को मिले, और भारतीय टीम ऑन पेपर अगर मैं देखूं तो काफी मजबूत नजर आती है, और जिस तरीके की क्रिकेट खेली है वो भी मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है। हमारे ओपनर्स आप देखें वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा सेट होता हुआ लग रहा है, बुमराह बहुत अच्छी फॉर्म में है, भुवनेश्वर कुमार की आप देखें तो किस तरीके से जितने मैच खेलते गए हैं वो भी बेहतर होते गए हैं, तो एक काफी मजबूत टीम है, पर क्रिकेट में ये कहा नहीं जा सकता। कुछ भी कहना मुझे लगता है एक गलती हो सकती है थोड़ी सी कि मैच से पहले ही आप ये कह देंगे कौन जीत जाएगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि एक अच्छा मैच हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किसका पलड़ा भारी है मैच शुरू होने से पहले, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक 70-30 भारतीय टीम का पलड़ा भारी।
और अब बात शतरंज की। भारतीय टीम में 12 साल बाद लौटे विश्वनाथन आनंद ने कनाडा के एरिक हैंसेन को 33 चालों में ही हरा दिया। सफेद मोहरों से खेलते हुए भारतीय खिलाड़ी पी हरिकृष्णा ने भी 33 चालों में राजवान प्रताव को मात दी। के शशिकरण ने अमन हम्बेल्टन को भी कम समय में हरा दिया। विदित संतोष गुजराती और एवगेनी बीरव के बीच मैच 72 चालों तक टिका और ड्रॉ रहा। वहीं महिला टीम का जीत का सिलसिला तीसरे मैच में आकर थम गया। उसे 23वीं सीड सर्बिया ने हाल ही में 2-2 की बराबरी पर रोक दिया। भारत की 2 विश्व स्तरीय खिलाड़ी कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावली ने अपनी अपनी कॉम्पिटिटर्स को मात दी, लेकिन ईशा कारावाड़े और पद्मी राउत अपने अपने मैच गवा बैठी। भारतीय महिलाओं ने अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 4-0 और दूसरे मैच में वेनेजुएला को 4-0 से हराया था। खेल समाचारों में आज इतना ही।
अब से कुछ ही देर में भारत में बजेंगे सुबह के 7। वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, लेकिन उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
भारत सरकार के दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री को नियमित करने के लिए कदम उठाने के खिलाफ देश भर के दवा दुकानदार आज एक दिन की हड़ताल पर हैं। दवा दुकानदारों का कहना है कि दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री से उनके व्यापार पर असर पड़ेगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से नामित ब्रेट कावाना और उन पर बलात्कार के प्रयास के आरोप लगाने वाली महिला ने सीनेट के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाए हैं। कावाना ने अपनी नियुक्ति की पुष्टिकरण प्रक्रिया को राष्ट्रीय शर्म बताते हुए कहा है कि किशोरावस्था में क्रिस्टीन ब्लासी फोर्ड का यौन शोषण करने के आरोप गलत हैं। इससे पहले समिति के समक्ष बयान देते हुए डॉक्टर फोर्ड ने रुआसी आवाज में कहा कि बलात्कार की कोशिश के दौरान जब कावाना ने उनका मुंह दबाया था तब उन्होंने अपनी जान जाने का डर महसूस किया था। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बताया है कि ईरान एक गुप्त स्थान पर परमाणु उपकरण और सामग्री का भंडार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए नेतन्याहू ने ईरान की राजधानी तेहरान में इस जगह का पता बताते हुए इसकी अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने की मांग की है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे देवाशीष कुमार। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com के साथ। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।